चैप्टर 116। अब आगे बस उसके एहसासों में खो जाना चाहता था। पता नहीं क्या था उसकी गुड गर्ल में कि जो इंसान कभी मुस्कुराता नहीं था वे अपनी गुड गर्ल को देखते ही मुस्कुराने लगता था। पता नहीं क्या था उसकी गुड गर्ल में जो उसे अपनी गुड गर्ल के पीछे पागल, आवारा और जुनूनी बनने पर अपने आप मजबूर कर देता था। देवांश ये सब सोच ही रहा था कि उसके कानों में दिशा की आवाज़ पड़ती है जो उसके कह रही थी, सर प्लीज़ हटिए मेरे ऊपर से वरना मैं पूरी तरह से दब जाऊंगी। प्लीज़ सर जल्दी हटिए, मुझे सांस नहीं आ रही है। दिशा की आवाज़ सुन देवांश अपने सेंस में वापस आता है और दिशा की तरफ देखने लगता है जो अपना चेहरा दूसरी तरफ किए हुए उसे ये सब बोल रही थी। जिसे देख देवांश को गुस्सा आने लगता है कि आखिर उसमें क्या कमी है जो उसकी गुड गर्ल उसे एक नज़र देखना भी पसंद नहीं करती। ये सोच वे खुद से ही कहता है, गुड गर्ल मुझसे नज़रें फेरने की तुम्हें सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। इतना बोल वे खुद के बॉडी को दिशा के बॉडी पर प्रेस करने लगता है, जिसे महसूस कर दिशा की भी अपने बॉडी पर कुछ फील होने लगता है, क्योंकि इस समय देवांश की बॉडी पूरी तरह से दिशा के बॉडी से चिपकी हुई थी, जिस वजह से दिशा की बॉडी रिएक्ट करना नॉर्मल था। क्योंकि जो लड़की कभी भी किसी भी लड़के के इस कदर कभी भी करीब ना गई हो, अगर कोई लड़का अचानक इस तरह से इतने करीब आएगा तो उसे ये सब फील होना नॉर्मल ही था। जिसे महसूस कर दिशा के रोंगटे खड़े हो रहे थे, साथ ही साथ उसकी सांसें भी तेज चल रही थी, इसलिए वे अपने हाथों को देवांश के सीने पर रखते हुए उसे दूर करके हुए बोली, सर प्लीज़ जल्दी हटिए, मुझे काफ़ी अजीब लग रहा है। दिशा की बात सुनकर देवांश के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ जाती है कि कम के कम उसके करीब आने से उसकी गुड गर्ल को कुछ महसूस तो हुआ। लेकिन कभी अचानक ही वे अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि उसकी बॉडी अब बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट करने लगी थी, साथ ही साथ उसका लिटिल मास्टर भी खड़ा हो गया था और उसे वहाँ हल्का हल्का दर्द होना भी स्टार्ट हो गया था, क्योंकि दिशा की करीबी अब उसके भी कंट्रोल के बाहर जा रही थी। वे बस जल्द से जल्द दिशा को अपना बना लेना चाहता था। वहीं दिशा जब उसे अपने नीचे कुछ चुभता हुआ महसूस होता है तो वे लगभग रोते हुए बोली, सर आप मेरे ऊपर से हट क्यों नहीं रहे हैं, मुझे कुछ चुभ रहा है, प्लीज़ उसे वहाँ से हटाइए। दिशा की बात सुनकर देवांश डेविल स्माइल के साथ दिशा के कान में जाकर बोला, गुड गर्ल उसे तो कभी ना कभी तुम्हारे अंदर चुभना ही है। इतना बोल वे तुरंत दिशा के ऊपर से हट जाता है, क्योंकि उसे मालूम था कि अब अगर वे एक सेकंड भी दिशा के पास रुका तो वे अभी अपनी लिमिट क्रॉस कर देगा। इसलिए वे तुरंत दिशा के ऊपर से उठ एक नज़र दिशा को देख तुरंत बाथरूम में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिशा देवांश को अपने ऊपर से हटता हुआ देख लंबी लंबी सांसें लेने लगती है, क्योंकि जब देवांश उसके ऊपर था तब उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसे सांस ही नहीं आ रही थी। देवांश के बड़े से मस्कुरल शरीर के आगे उसे अपना नाजुक शरीर पूरी तरह से दबता हुआ महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर देवांश कुछ देर और इसी तरह उसके ऊपर होता तो दम घुटने की वजह से उसी समय उसकी जान चली गई होती। दिशा लंबी लंबी सांसें लेने के बाद तुरंत उठकर बैठ जाती है और अपने आप को संभाल खुद पर ही गुस्सा करके हुए कहती हैं, मैं ऐसे कैसे सर के ऊपर गिर गई, मुझे ध्यान रखना चाहिए था, पता नहीं सर मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। इतना बोल वे खुद के ही सोच में गुम हो जाती है, क्योंकि देवांश की अभी अभी कही सारी बातें उसके दिमाग से निकल गई थीं, या पर यूं कहें कि उसने देवांश की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ मुंबई, सिंघानिया विला। रूही और परी थके हारे कॉलेज से घर वापस आ जाते हैं और उन्होंने गोलगप्पे वाला आइडिया भी ड्रॉप कर दिया, क्योंकि रुद्र के लगाए गए बॉडीगार्ड्स उसे अकेले कॉलेज के बाहर कहीं जाने ही नहीं दे रहे थे, और अगर वे उनके सामने गोलगप्पे खाती तो वे जाकर सीधा रुद्र को बता देते। उसके बाद रुद्र उनके साथ क्या क्या करता और कौन कौन सी पनिशमेंट्स देता ये बात उन्हें खुद भी नहीं पता थी, इसलिए वे अपना मन मारकर वापस विला आ जाती है। वहीं सुमन, कामना और प्रीता जो इस वक्त हॉल में ही बैठे हुए थे, रूही और परी को देख खुश हो जाते हैं। सुमन जी उन्हें थका हुआ देख उनके पास जाते हुए कहती हैं, बेटा तुम लोग सोफे पर बैठो, मैं अभी तुम लोगों के लिए कुछ खाने को और पानी लेकर आती हूँ। सुमन जी की बात सुनकर रूही मुस्कुराते हुए कहती हैं, थैंक यू आंटी, यू आर सो क्यूट। इतना बोल सुमन जी के गाल पर किस करके हुए जाकर आराम से सोफे पर बैठ जाती है। वहीं सुमन जी रूही की हरकत देख मुस्कुरा देती है और किचन में कुछ नाश्ता लेने चली जाती है। वहीं परी भी रूही की नौटंकी देख अपना सर ना में हिला वे भी रूही के बगल में आकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद सुमन जी किचन से गर्म गर्म पकौड़े, चाय और पानी लेकर बाहर आती हैं और सभी को चाय पकौड़े सर्व करती हैं। वहीं रूही और परी पकौड़े देख खुश हो जाती हैं, लेकिन उन्हें पहले प्यास लगी थी, इस वे पहले पानी पीती हैं, उसके बाद परी आराम से पकौड़े खाने लगती है। वहीं रूही भी पानी पीने के बाद जैसे ही पकौड़े ले अपने मुँह में डालने वाली होती है, तभी उसके कानों में कामना की जहरीली बात पड़ती है। कामना जो कब से इस नज़ारे को अपने गुस्से भरी निगाहों से देख रही थी, जब उसके और बर्दाश्त नहीं होता तो वे रूही को देख गुस्से में लगभग ताना मारते हुए बोली, आजकल पता नहीं क्या हो गया है इस जमाने को,
पहले के जमाने में बहू सास की सेवा करती थी, लेकिन आज के जमाने में बहू के अंदर कोई शर्म और लिहाज ही नहीं है। आजकल तो उल्टा सास को ही बहू की सेवा करनी पड़ रही है, और बहू यहाँ बाहर से नैन मटकता कर आराम से बैठ सास के हाथों के बने पकौड़े को मजे लेकर खा रही है। कामना का इतना बोलना ही था कि रूही के हाथ पकौड़े खाते खाते रुक जाते हैं और उसकी आंखों में हल्की नमी आ जाती है, जिसे भी जल्दी से छिपा पकौड़े को वापस प्लेट में रखते हुए सुमन को देख बोली, आंटी मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ, फिर खा लूंगी। इतना बोल वे तुरंत वहां से अपने कमरे में चली जाती है। वहीं रूही को इस तरह जाता देख सभी को कामना के ऊपर गुस्सा आ जाता है, जिसे देख परी भी पकौड़े को रखते हुए बोली, मॉम मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ, मेरा मन नहीं है अब कुछ भी खाने का। इतना बोल वे भी अपने कमरे में चली जाती है। वहीं रूही और परी को जाता देख प्रीता कामना को देख गुस्से में बोली, कामना ये क्या तरीका है बच्चों से बात करने का, और क्या यहाँ पर नौकरों की कोई कमी है जो हम अपने घर की बेटी और बहू से काम करवाएं। प्रीता की बात सुनकर कामना बोली,
मॉम भाभी भी तो काम करती है ना, तो उसे भी करना चाहिए। अगर हमने उसे ज्यादा छूट दी ना, तो वे खुद को इस घर की मालकिन समझने लगेगी।